તારીખ 16/1/1994 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 29.
भक्ति से परम भक्ति से नमस्कार करते हैं। शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हुए हैं ऐसे ज्ञानी पुरुषों ने नीचे खड़े हैं उन्हें छोकर सम्यक दर्शन के निवास के सर्वोत्कृष्ट स्थान है। ज्ञानी पुरुष का विशेषण या ज्ञानी पुरुष की विशेषता जो है कि शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त हुए हैं, अपना शुद्धात्म स्वरूप को अपना लिया अनुभव को ही प्राप्ति बोली जाती है। ऐसे कुछ स्वरूप कहना जिसे प्राप्त है अनुभव में प्राप्त की प्राप्ति है, अनुभव में प्राप्त की प्राप्ति है। मैं शिवपद को मैंने निम्न लिखे हुए शिवपद को संयुक्त दर्शन के निराश का सर्वोत्कृष्ट स्थान कहा है। ये छह पद में समूह दर्शन रहा है और प्रमुख समूह दर्शन को निराश करने के लिए ये छह पद का एक प्रश्न है। कोई आत्मार्थी जी ये छह पद को समझ करके प्रलोभन करने अपने में आग्रह बना दे तो समय क्योंकि प्राप्ति उसको प्रथम पद आत्मा है। आत्मा की मौजूदगी, आत्मा की मर्यादी अपने विधि मानता है। मैंने अपनी जैसे घटपट आदि पदार्थ है ऐसे हम आत्मा भी है, आत्मा मैंने हम भी है। हम लोग कुछ एक गुण होने के कारण से जैसे घटपट आदि होने का प्रमाण है वो दृष्टांत रूप से, वैसे ही स्वतः प्रकाशक यानी चैतन्य सत्ता का प्रत्यक्ष गुण जिसमें है ऐसा आत्मा होने का प्रमाण है। एक ही वचन में अनुभव भरा है, इस एक ही वचन में आत्मा है इसका अनुभव भरा है। आत्मा है दो शब्द है, आत्मा है लेकिन आत्मा है माने क्या कि स्वतः प्रकाशक ऐसी चैतन्य सत्ता का प्रत्यक्ष गुण अनुभव गोचर होता है, इसलिए हमारा अस्तित्व इस प्रकार से होने का प्रमाण हमको मिलता है। किस तरह से प्रमाण मिलता है एक ही बात में बहुत गहरा है। हमारी विद्यमानता स्वतः प्रकाशक ऐसी चैतन्य सत्ता की प्रत्यक्षता के कारण है, विशेष मार्ग को प्रत्यक्षता के लिए तो हम है इतना ही नहीं, हम प्रत्यक्ष है। इस विषय में थोड़ी विशेष बात यह है कि जहां तक मुमुक्षु जीव आत्मा का विचार भी मन के संग में रह करके परोक्षता में खड़ा रह करके एक परोक्षता का पर्दा रखता है, वहां तक सम्यक पुरुषार्थ का सम्यक रूप से उत्थान नहीं होता। इसलिए आत्मतत्व का कितना भी विचार, कितना भी विशेषण है, जितने विशेषण है आत्मस्वरूप का, उसका विचार किया जाए, उसका विचार किया जाए, आत्मचिंतन कहते हैं, स्वरूप चिंतन कहते हैं, मनन कहते हैं, भोजन कहते हैं, फिर भी वहां अनुभव को लाओ पुरुषार्थ नहीं होता। और क्या होगा, इस चिंतन करते करते भी थक जाएगा आदमी, ये हालत होती है। जबकि प्रत्यक्षता जो है, इस प्रत्यक्षता से जो बल आता है, ये सम्यक होकर के जो बल आता है, ये अनुभूति प्राप्ति कराता है, अनुभव को ले आता है। ये एक विषय निगम से प्रत्यक्ष करने का है, और सिर्फ विचार निकालने निगम से प्रत्यक्ष करने का है। ये विषय करें, कितना भी चिंतन करे, कितना भी मनन करे, खून खोद कर भोजन करे, विशेष प्रलाभ प्रलाभ निभाने का अनुभव के प्रकरण में इसका ध्यान अनुभव के प्रकरण में इसका ध्यान क्योंकि हमारी अवस्था समाधि से परोक्ष ज्ञान में रहने की नहीं है। हमारी अवस्था क्या है कि परोक्ष ज्ञान में आत्मा का विचार, आत्मसंबंधी अभ्यास, स्वाध्याय, श्रवण, चर्चा, सब कुछ जो करते हैं उसमें परोक्षता का चर्चा तो बीच में प्रतिबंध रूप पड़ा है। पर जहां तक ये परिस्थिति है अनुभव की अनुभव का अवसर नहीं है, प्रश्न नहीं आता। अनुभव का अवसर आता है तब प्रत्येक शब्द का आधार करके आत्मा के अस्तित्व को प्रसिद्ध कर दिया है। इस प्रत्यक्ष शब्द डाल करके प्रत्यक्ष देखा तो बहुत सादा वाक्य है, एक प्रत्यक्ष शब्द डाल करके सारे विषय को खोल दिया है कि अपने विद्यमान का साथ प्रत्यक्ष होना, अपने रूप होना है, ये तब तो आत्मा है। इस प्रथम पद को हमने स्वीकार किया है, वरना वो बात हवा में रहती है, आत्मा में नहीं रहती है, हवा में। અમુક ગુણ હોવાને લીધે જેમ ઘટપટા ગુણ હોવાનું પ્રમાણ છે, સ્વતંત્ર પ્રકાશક એવી ચૈતન્ય સત્તાનો પ્રત્યક્ષ ગુણ જેને વિશે છે, પ્રત્યક્ષ સ્વભાવ, પ્રત્યક્ષ ગુણ માને પ્રત્યક્ષ સ્વભાવ જેનો વિષય છે, એવો આત્મા હોવાનું પ્રમાણ છે, એવો આત્મા હોવાનું પ્રમાણ છે. સામાન્ય રીતે આવું સાદુ વચન હોય છે, સામાન્ય રીતે જો આવું સાદુ વચન છે એ રૂઢિગત બોલવાનો પ્રકાર નહીં. વચનોથી વિશિષ્ટતાને એક બાદ તો નક્કી હોવો કે વચન ગાંભીર્ય બહુ હે, વચનથી ગંભીરતા સાદી બાત નહીં ચૈતન્ય સત્તા કા મેને અપના ચૈતન્ય મૌજૂદગી કા પ્રત્યક્ષ સ્વભાવ હૈ, અનંત પ્રત્યક્ષતા કેવલ જ્ઞાન મેં પ્રસિદ્ધ હોઈ તો નહીં હોઈ કા કહી કે જો ભીતર ને અનંત પ્રત્યક્ષતા ભરી છે કેવળ જ્ઞાન તો બી અનંત સામર્થરૂપ હૈ તો સામર્થરૂપ હૈ તો સામર્થ તો પ્રતીતિ ને કહેશે લીધે પ્રતીતિ ને વિશ્વાસ ને ખાતરી ને કહેશે. ये प्रश्न हमारे मनुष्य लोग करते हैं, ये सब सामर्थ रूप है, पर्यावृत जैसी है ऐसी तो समझ में आती है, लेकिन त्रिकाली में प्रत्यक्ष पड़ा तो प्रगत पड़ा है नहीं तो कैसे वैसा है वैसा ज्ञान में कैसा आ जाए, वैसा है ऐसा ज्ञान कैसे हो जाए. अंश पर से अंशी व्यक्त होता है દ્રષ્ટા બહુ અચ્છા લાઈન જાય તો પતા પડતા રક્ત કરે ઉસે રક્ત આદમી ક્રોધ જૈસે રક્ત હીરા દિખતા મનુષ્ય પૈસા દેતા પૈસા તો મામૂલી પથ્થર જૈસે પથ્થર દીધો, લેકિન ઉસમે જો કુછ અંશ દેખતા હૈ અંશ મેં પૂરા હજાર ઉસકો દીધો. પ્રેક્ટિકલ મોડલ હૈ તો થિયરી સે બતા શકે એસી બાત તો પ્રેક્ટિસ કરવી પડતી, પ્રેક્ટિસ બાર બાર દેખને કી પ્રેક્ટિસ કરવી પડતી, જિતની બાર જ્યાદા દેખને કી પ્રેક્ટિસ કરે ઉતની નજર ઉસમે સૂક્ષ્મ ઓર કરી હોતી પ્રવીણતા કુશળતા એક્સપર્ટા જો જ્ઞાન સામાન્ય હૈ જો જ્ઞાન ભી બને ઉમે પ્રત્યક્ષતા કા ખુલતા તો પ્રત્યક્ષતા કા આ સકતે અનંત પ્રત્યક્ષતા જૈસે જ્ઞાન મેં આવી તો મૂલ્યાંકન હો ગયા, જૈસે વક્ત હીરા મેં મૂલ્યાંકન હો ગયા, ઉત્તર યોજના હોય તો મજદૂરી કતની લગેગી, એસ વક્ત મેં હીરા હીરા બના મજદૂરી કતની લગેગી, એ તો મામૂલી ચીજ હૈ. હીરા કી જો વેલ્યુ હૈ તો મજદૂરી ક્યા ચીજ હૈ, પ્રત્યક્ષ અંશ છે તો પતા ચલી જાય, અને બાબત ને તો પ્રત્યક્ષ ન હોને પર પ્રકૃતિ એટલી આપી હૈ કે હમ ઉસ બાત કો અનુભવ કરતે હૈ તો આશ્ચર્ય હો જાયેગા. જૈસે મુંબઈ મેં લંબાડી હુઆ, વો ખુદે ને કહી ગયે હૈ, વો બંધ ખુદો હૈ, ફિર હાલત ક્યા હોગી કે હર જગહ ઉસકે દહેશત ચાલુ હો ગઈ. કહીં અમુક ઉધર જા રહે તો ભમ તો નહીં હોગા, ઉધર જા રહે તો વહાં ભમ તો નહીં હોગા, તો બહુ બુરી તરહ સે લોગ ગયે. અબ હમકો કોઈ બતા દેતા હૈ કે હમકો જગહ દે, ઉસકો કોઈ જંગલ કો ઉસકો કુછ દે, યા એરોપ્લેન યા રેલવે સ્ટેશન દે, અચ્છા વાત હૈ. તો ઉધર કોને મેં પડા હૈ વો ભમ કો ભમ કે ગયા હૈ, તો હમકો ફર્ક લગાતે હમને તો દેખા નહીં, પણ દેખા તો બંધ હોવા દૂસરા હૈ કે આપ કૈસે ખાતરી કરે, કૈસે માન લે આપકે કહેને સે, પણ છૂટા હુઆ તો દેખા નહીં, તો કોઈ એસા હી પડા હૈ કે પથ્થર પડા હૈ, એસા પડા હૈ, છૂટા હુઆ તો દેખા નહીં. વિશ્વાસ કૈસે આ રહા, તો ભાઈ હમને લગા ભાગને મે કે બિના દેખે ઇસકા અંશ ભી નહીં દેખા, પ્રગટ અંશ કો તો ઉનકા ફૂટા હુઆ દેખા હૈ, કોઈ ચિંગારી નીકળતી દેખા તો અલગ બાત હો ગયા, કોઈ નહીં દેખા. કોઈ દિન કુછ વૈસા વૈસા ભી જો લિખને મે આતા હૈ યા બિના દેખે ભી કોઈ હોતા હૈ, તો તુમે ઓર હું બાતા મુદ્દા પર એક પોઈન્ટ પે આ ગઈ. આત્મા ચૈતન્ય મૂળ કા પૂર હૈ, મૂળ કોઈ મૂળ મને સમજાયા, પ્રત્યક્ષ પૂર કા પૂર હૈ, કેટલી પ્રત્યક્ષ કા પતા ચલ જાતા કુછ નહીં સત્તા વિદ્યમાન સત્તા કા ભી દૂસરા કુછ હૈ, સત્તા અસ્તિત્વ કો નહીં સ્વીકાર કરતી, દૂસરા કુછ નહીં સ્વીકાર કરતી. જ્ઞાન મે પ્રત્યક્ષ પણા આ જાતા હૈ, ઇસકે પહેલે શ્રદ્ધા જો અપને કા અસ્વીકાર મે પડી ગઈ, વો સ્વીકાર મે આવેગી નહીં કભી. ઇસ વિષય મે ઉપર કા અવલોકન બહોત જબ બનતા હૈ, આત્મ અવલોકન બહુ બઢતા હૈ, તો જ્ઞાન સામાન્ય મે જ્ઞાન વિજન છે, પ્રત્યક્ષ અંશ છે, પૂરા પ્રત્યક્ષ અનંત પ્રત્યક્ષ અસ્તિત્વ હૈ, ચૈતન્ય સત્તા હૈ, તો પ્રમાણ હોતી હૈ, યાની સ્વીકાર કરાતી પ્રમાણ મને માન્ય હોતી હૈ, વિશેષ રૂપ સે માન્ય હોતી હૈ, ઇસકા નામ સમાન હૈ. આત્મા હૈ એટલે બહુ ખરા હૈ, પૂરા સમય દર્શન કરે છે, પહેલો પદ નહીં સમય દર્શન કેમ તો એમ તો પહેલું હોય, બાકી તો જો છ પદ હૈ વો તો એક તો પહેલું. અને આત્મા હૈ કોઈ સર્વોત્કૃષ્ટ સમય દર્શન કા નિવાસ સ્થાન તો પહેલા પદ ની હૈ. બાત કી બાત તો સર વિધિ કી વિશેષ કે લીએ સબ બાત કી બાત હૈ, પર્યાય કી વિધિ વિશેષ કી करेंगे समय प्रश्न का निवास होने का सुख तो आत्मा है यही है। इसलिए अपने ज्ञान में स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, यही विनेन्द्र भगवान की कहो या अनंत ज्ञान की आज्ञा कहो, तो अपने ज्ञान में अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। स्वरूप की प्रत्यक्षता में प्रत्यक्ष विद्यमानता में हम स्थिर हो जाएंगे, बस फिर कोई आदमी जाति उपाधि कुछ नहीं है, फिर आत्मा को कुछ दिखता कोई कारण श्रद्धा का भी
है। अवलोकन एक ही रास्ता है, अवलोकन
अवलोकन
वही उपाय
है, एक ही उपाय विचार उसका उपाय नहीं है, अवलोकन
उसका विशेष बताइए विचार अवलोकन
विचार परोक्ष किसका होता है। जब मैं आपके सामने नहीं था आपने मेरा विचार किया, क्योंकि जब मैं सामने बैठा हूं तो मेरा विचार करते हैं आप क्या
देखते हैं,
आपकी अनुपस्थिति में आपका विचार हो सकता है, लेकिन जब सामने हो तो विचार करने का क्या प्रश्न है, देखते हैं। तो विचार है, विचार में आत्मा के विचार में हम आत्मा को परोक्षता में रख देते हैं, जबकि वो स्थिर प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष वो जिसके विषय है, प्रत्यक्ष स्वभाव जिसमें है ऐसा आत्मा है। आत्मा जब से हमारे पास प्रत्यक्ष है हमारा आत्मा, पर हम उसको रखते हैं परोक्षता में, ये बात उल्टी है, क्योंकि भी है उल्टी है बराबर। इसलिए अवलोकन में आत्मा प्रत्यक्ष है, विचार में आत्मा परोक्ष है। देखिए हमारी तत्व ज्ञान की चर्चा में अवलोकन की चर्चा नहीं है, जो चर्चा करती है तो विचार वाली चलती है, न्याय तर्क अनुमान आदम हो सब हिसाब बिना की माथा पति उम्र बीत जाए वहां तक जितना कितना भी अभ्यास हो जाए, चालीस संख्या हो जाए, कितना भी विचार चिंतन हो जाए, कुछ पकड़ में आएगी। इसलिए इसका रास्ता कोई दूसरा है, विचार विदोष है, आत्मा का अंग नहीं है, तो रुपये वो आप पशु को शुरू न कर रहे, अब क्यों नहीं विचार तो है और रहा है, शून्य साधन है, कुछ दूसरा ही साधन है, और सब साधन से जो दूसरा साधन है, और ये मुख्य की भूमिका में जो कोई तो ये अवलोकन का साधन है। ये विचार को कहा गांधी जी है, गांधी जी ने कहा कि अपक्षपात रूप से अपना दोष को देखना निर्दोष में जो होगा भूमिका मान सके, मतलब क्या चलते परिणाम का अवलोकन करो, जब चलते परिणाम का अवलोकन करोगे अपने भावों का, तो अवलोकन करने का हमारी प्रैक्टिस नहीं होने से पहले तो जो मोटी मोटी बात है वो देखने में आई, और मोटी बात कौन सी है, अपने दोष है वो स्थिर है, सारे परिणाम में जो दोष है वो स्थिर भाव है, पर ज्यादा भी जो स्वभाव है वो सूक्ष्म है, तो देखते देखते जो हमारी नजर सूक्ष्म होगी तब तो हमारा ज्ञान देखने में आएगा, अवलोकन में आएगा। अवलोकन में आने से उसका स्वभाव क्या है अवलोकन में आएगा, रहा है, पहले तो उपयोग उपयोग देखने में आएगी और उपयोग लक्षण से सनातन स्फुरित आत्मा जो है स्वभाव है वो देखने में बाद में आएगा, क्योंकि स्वभाव इसके लिए सूक्ष्म है, पर्याय व्यक्त है और पर्याय में रहा हुआ ज्ञान विज्ञान में जो प्रत्यक्ष स्वभाव है वो बहुत सूक्ष्म है, और केवल होता है इसलिए देखने का व्यक्ति है वो अच्छी तरह होना चाहिए। आत्मा है उसने सब कुछ भर दिया है और एक प्रत्यक्ष शब्द डालकर आपको खोल दिया है, प्रत्यक्ष स्वभाव वाला आत्मा चैतन्य है, सफल प्रकाशक है, लेकिन प्रत्यक्ष सत्ता है, प्रत्यक्ष स्वभाव है, परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कर लो, प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष तौर से प्रत्यक्ष कर लो, काम हो गया। क्या तो कुछ नहीं होता तो विचार 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 चिंतन वाली बात चलेगी, उसमें कोई अनुभव का प्रसंग
नहीं है। आपने कर दी क्या तो काम
ऐसे लोगों के लिए कहा है कि जो संसार का विचार करता है आत्मा का नहीं करता है, इस तरह के लोगों को कहा है, ऐसे भी लोग हैं कि जो व्यापार धंधा व्यवसाय अपने जो कुटुंब परिवार से मुझसे करते हैं उनको आत्मा का विचार कर सकते खुद को मेरी गति क्या हो चाहिए है विचार कर तो प्राप्ति का अवसर है, लेकिन जो विचार करते हैं उसको कैसे उससे कहेंगे सुगंध में क्या था कि विचार करते तो ये थक जाएगा, विचार करते तो कुछ क्या करेगा तो कुछ थक जाएगा, तो जो आत्मा का विचार करते हैं उसको कहेंगे इसको प्रत्यक्ष कर सकते विचार से काम होने वाला, ऐसे अलग अलग तरह को अलग अलग बात करें विचार और ज्ञान औषध विचार है औषध विचार है औषध विचार विचार और ज्ञान दोनों किया जाता है, तो कौन विचार को पास है ना, तो क्या है जो विचार करते हैं उसको पकड़ आ जाती है, तो कृपा फरमाया है उनको तो कौन विचार को पास तो उनको कृपा जो के पत्र के माध्यम से आत्मा का ही विचार करते हैं सारे लोग जितना हो सके, तो फिर ये प्रश्न क्या रहता है उनको प्राप्ति क्यों विचार तो किया कि नहीं किया, अभी तक विचार नहीं किया है तो किया है प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है क्यों, तो और जगह जो उन्होंने ये बात कही है जैसे ये कृतज्ञ का ही रचना में और ये सत्पद वाला भी रचना में है, तो उसमें जो बात है उस बात पर हमारा ध्यान क्यों नहीं है, विचार तो परोक्ष स्थिति है आत्मा से, विचार की भीतर स्थिति तो आत्मा का परोक्ष ज्ञान वाली है, मन के संग में विचार होता है, तो यहाँ प्रत्यक्ष बात आता है तो हमारा ध्यान जाना चाहिए विचार की आगे की भी कुछ बात है, विचार विचार करने से आगे की भी कुछ बात है, फिर वो कैसी है जहां तक वो समझ में नहीं आता तो उसके पीछे लग जाना पड़ता है, हमारे हमारे अपने आप से समझ में नहीं आ रहे तो कोई कोई समझाने वाले हैं उनसे समझ लेते कोशिश करने के लिए, लेकिन इसके पीछे चढ़ना चाहिए, इसके पीछे चढ़ना चाहिए, इसमें व्यवहार क्या होता है विचार ज्ञान मरता और विचार इसमें उपयोग को अंदर में ले जाने की बात है, शब्द से अकड़ करने के लिए सकल मोह का अनुभव घटने से 166 का ही घटना मृत में गुजरा राष्ट्रीय बैंक को लिखा हुआ पत्र है। दर्शन मोह का अनुभव घटने से अथवा नाश होने से और वायु विष्णु प्रकृति उदासीनता से विरक्तता से दोनों साधनता और मर पुरुष के चरण कमल की उपासना के बल से द्रव्यानुयोग कर सकता है। द्रव्यानुयोग समझना नहीं है, द्रव्यानुयोग तो परिणमाने की चीज है, मिठाई देखने की चीज नहीं है, खाने की चीज है। हम द्रव्यानुयोग को फल डालते हैं, परिणमाने की चीज है। वो तो दर्शन का अनुपात कम होगा, आयु में विरक्तता होगी और ऐसे पहले पद में दर्शन का निवान है, काल आत्मा देवी है, आत्मा की विद्यमानता देवी है। दूसरा पद आत्मा नित्य है, घटपट आदि पदार्थ अमुक काल वर्ती है, अमुक काल तक उसका वो दूसरी लिखने पर आता है। आत्मा आदि अनंत नित्य है, आत्मा त्रिकालवर्ती है, घटपटादि संयोगिक पदार्थ है, यानी परमाणु से बने हुए पदार्थ है। आत्मा स्वभाव रूप पदार्थ है, इसमें स्वभाव के कारण से इस पदार्थ की मौजूदगी है, इसकी विद्यमानता है, वो अपने स्वभाव के कारण से है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति के लिए किसी भी संयोग का संयोग अनुभव योग्य नहीं होता। कोई नया आत्मा पैदा होता है जगत में ऐसा नहीं होता, तथा कोई भी संयोग से, कोई भी संयोगी द्रव्य से, यानी कोई दो पदार्थ की मिलावट करने से चेतन सत्ता प्रकट होने योग्य नहीं है। चैतन्य सत्ता नई पैदा नहीं होती है, कहीं भी चेतना नहीं उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए अनुत्पन्न है। और संयोग के होने से अविनाशी भी है, और जो संयोग की मिलावट से नहीं हुआ है, स्वभाव से है, इसलिए उसका नाश भी नहीं है। क्योंकि जिसकी किसी संयोग से उत्पत्ति नहीं होती, उसका किसी कारण से नाश होना भी हो नहीं सकता। जो चीज बनाई जाती है वो टूट जाती है, लेकिन जो स्वतः अपने स्वरूप से है उसका नाश नहीं होता, रूपांतर होता, पर्यायांतर होता, अवस्थांतर होता है, लेकिन मूल पदार्थ का नाश कभी नहीं होता। जैसे परमाणु, एक परमाणु नया पैदा होता है विश्व में, एक परमाणु कितना भी छोटा है फिर भी उसका नाश कभी नहीं होता, किसी भी कारण से नहीं हो सकता। ऐसे एक आत्मा है, वो अनादि अनंत है, इसलिए नित्य है, इसकी उत्पत्ति किसी से हुई नहीं, इसका नाश भी किसी से होने वाला नहीं। मैं अपनी नित्यता देखने से ये तो बात समझ नहीं पड़ी, अब देखने की बात है। हर बात में हमको परिणाम लेना है, सिर्फ नित्यता समझ में आ गई इसलिए हमने इस वचन को समझ लिया, इस बात को समझ लिया और ज्ञान हो गया, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान होने का जिसको को अपना आत्मस्वरूप, अपना स्वरूप नित्य प्रतीत होता है, उसको कोई चिंता नहीं होती। क्यों? तो चिंता तो नाश की होती है, जैसे सबको संसार में सबसे बड़ी चिंता किसकी होती है? मृत्यु की होती है। और मृत्यु में क्या अनुभव करता है जीव? के नाश होता होगा। वास्तव में यहां भी जीव का नाश नहीं होता, अवस्था से अवस्थान्तर होता है। यहां से कोई और जगह चले जाता है, यहां से फिर और जगह, फिर और जगह, ऐसे परिभ्रमण करता रहता है संसार में। तो कहते हैं कि है तो नित्य हो, हमें नित्य है, मेरा तो विकास नहीं है। तो मेरा नाश नहीं है तो मेरी मृत्यु का भी कोई भय नहीं है, तो फिर और किस चीज का भय आएगा? जिसको मृत्यु का डर नहीं है, उसको दूसरा डर जो इसके नीचे का स्तर का है, वो होने का होने की संभावना। जैसे हमारा आधार हमारी संपत्ति है, हत्या है, तो जब हमको लगता है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है कि हमारे जीवन पर्यंत हमको कुछ तकलीफ होने वाली नहीं है, तो हमारी दीनता जो है, लाचारी है, वो छूट जाती है, आती नहीं है। तो हमारे पास उतना है। अब 150 साल की व्यवस्था में भी हमको दीनता नहीं होती है, तो अनंत काल की हमारी जो मौजूद की विद्यमानता की नित्यता उनको विश्वास में प्रतीत में आ जाए, तो हमारी दीनता कहाँ रहेगी? इतनी भी दीनता आएगी नहीं। वास्तव में देखा जाए तो संसारी प्राणी को आज की चिंता नहीं है, कल की ही चिंता है सभी को। कुछ बता है, आज तो कोई इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन आज की तकलीफ नहीं है इसकी खुशी हम नहीं भोग सकते हैं, क्योंकि कल की चिंता में हम घिरे हुए हैं। भविष्य की कल की चिंता में इतने घिरे हुए हैं कि आज हमको तकलीफ नहीं है, उसका सुख भी हम भोग सकते नहीं है। ये हमारी हालत, हमारी अनादि अनंत नित्य विद्यमानता के अज्ञानता के कारण हमारी ये हालत है। आज भी हमको कुछ हुआ नहीं है, वैसे कभी भी हमको कुछ होने वाला नहीं है। आज हमको कुछ हुआ ही नहीं है तो कल भी नहीं होने वाला, परसों भी नहीं होने वाला, आगे के किसी भी काल में हमको कुछ होने वाला। हमारी विद्यमानता ऐसी स्वभाव से ही बनी रही है, बनी बनाई है, नहीं बनाने की विश्वास तो आ गया। इसलिए ज्ञानी को एक क्षण पीछे की भी चिंता है, एक पल के बाद क्या होगा इसकी चिंता नहीं है, फिर आगे की तो चिंता करने का सवाल ही नहीं है। उसका सुख का कारण, सुख का कारण समझ है, सही समझ है। दुख का कारण जो गैर समझ है वही है, दूसरा कुछ नहीं। लेना देना सुख दुख में कुछ नहीं है। सुख सुख प्राप्ति के लिए कुछ लाना नहीं है, दुख प्राप्ति के लिए कुछ हटाना नहीं है। हमारी समझ को ठीक करना है, उतनी बात है। हम दान बैठे हैं कि हम फलाने फलाने हैं और हमारा मृत्यु कभी न कभी होने वाला है, तो ये भाई हमको हमेशा हमेशा सताता ही रहेगा। भाई का एक उंदर कलेजा में बैठ जाता है और हमेशा ही काटता रहता है, और इसकी वेदना जीव की परिणति में चालू रहती है, भाई से गिरा हुआ ही रहता, निर्भय हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी समझ में वास्तव में मैं नित्य हूं वो आती नहीं है, वो आई नहीं है। इसलिए ज्ञानी समझाते हैं कि आत्मा है तो नित्य है उतना ही नहीं, आज है सदा के लिए है और है। उसकी जो विद्यमानता है वो कभी खत्म होने वाली
नहीं
है, अव्यापार है। न आत्मा को कोई शस्त्र से मारा जा सकता है, न अग्नि से उसको जलाया जा सकता है, न पानी से उसको भिगोया जा डुबाया जाता है, न हवा से उसको सूख सकते हैं। कोई ऐसा जगत में पदार्थ नहीं है कि आत्मा को बाधा डाल सके, ऐसा कोई जगत में पदार्थ नहीं। नित्य है लेकिन अभी आप बात करो उसको बाधा कोई कर सकते नहीं है, ऐसी उसकी स्थिति है। हम अनादि से जीते आ रहे हैं, निगोद में भी हम जीते थे, एकेंद्रिय में भी जीते रहे, धुरेन्द्रिय में जीते रहे, आज पंचेंद्रिय में हम जीते हैं, पर अहंकार तक जीते ही रहेंगे। क्योंकि जीवत्व शक्ति जो आत्मा में अनंत शक्ति है, उसमें एक जीवत्व शक्ति है। तो जीवत्व शक्ति की में ताकत कितनी है, अनंत काल जीवित रखने की ताकत है, उसको कोई मार सकता
नहीं।
ऐसी प्रकृति आने से सभी प्रकार का भय खत्म हो जाता है, और भय खत्म होने से भय का दुख भी खत्म हो जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन आत्मा कुछ कार्य करता है कि नहीं करता है, तो करता है निरंतर कुछ न कुछ आत्मा कार्य करता रहता है। वो अर्थ क्रिया संपन्न ऐसा लिया है, क्या आत्मा करता है सर्व पदार्थ अर्थ क्रिया संपन्न है। आत्मा अकेला नहीं, परमाणु भी क्रिया चलती रहती है, परिणाम से बदलना, अवस्था से बदलना, हालत से बदलना, ये पदार्थ का स्वभाव है। जैसे हम एक चीज नई ला करके, एक कपड़ा नया ला करके कबाड़ में रखते हैं, प्लास्टिक में पैक करके ऐसा रखते हैं, और उसी कपड़े को फिर 10 साल के बाद बाहर निकाले और फिर उसी का नया कपड़ा लाए, दोनों में अंतर लगे, ये नया है ये पुराना है, फ्रेश है ये पुराना है। क्योंकि पुराने पर होगा इसका स्वभाव है, पुराना होगा इसका स्वभाव है। सारे किले पड़ जाते हैं, मकान पुराना हो जाता है, सब कुछ शरीर भी बदलता रहता है, नहीं चाहे तो भी बाल्यावस्था में से युवावस्था में से वृद्धावस्था रोकी जा सकती
नहीं,
क्योंकि परिणाम जो है तो पदार्थ का हमेशा चालू रहता है। कुछ न कुछ परिणाम क्रिया सहित ही सभी पदार्थ दिखने में आता है। आत्मा भी क्रिया संपन्न है, आत्मा भी कुछ न कुछ क्रिया करता है, वो भाव की क्रिया है, आत्मा भाव करता ही रहता है। आप अपने भाव को बंद कर दो एक सेकंड के लिए, जानने का भाव है, ज्ञान स्वभावी आत्मा है,
हाजी
जानने का भाव को बंद कर दो, नहीं जानता है
नहीं,
ये क्रिया संपन्न पदार्थ है, हमेशा जानने का दूसरे दूसरे अनेक भावों की क्रिया करता ही रहता है, क्रिया संपन्न है। क्रिया संपन्न है इसलिए करता है, क्रिया का करता क्रिया है, तो उसे करने वाला खुद ही है। वो क्रिया पड़ा त्रिविध तीन प्रकार से श्री जी ने विवरण किया है। वीरेंद्र परमात्मा ने आत्मा के परिणमुखी क्रिया का तीन प्रकार कहा है। तीन प्रकार में कौन से हैं? एक परमार्थ है, मैंने वास्तविक स्वभाव से देखे तो आत्मा का मूल स्वभाव जो है उससे देखे तो स्वभाव प्रवृत्ति से निज स्वरूपता करता है, ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद अस्तित्व वस्तु तो इसका जो शुद्ध स्वाभाविक परिणाम है उसका वो करता है। आत्मा में ऐसा स्वभाव है कि वो शुद्ध परिणाम नहीं करे, ऐसा ही इसका स्वभाव है। अनूप चरित व्यवहार से यानी विशेष संबंध से व्यवहार से आत्मा योग कर्म का करता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। हमारा प्रारब्ध हमने ही किया है, दूसरों ने किसी ने नहीं किया है। इस बात में तो बहुत बात हुई है कि जो हमारा प्रारब्ध हमने किया है तो वो हमको प्रतिकूलता दे रहा है, द्वेष का कारण खत्म हो जाता है। और दूसरा हमको अनुकूलता दे रहा है, इसलिए इसके प्रति राग का कारण खत्म हो जाता है। जब राग द्वेष दोनों खत्म होता है तो वितरकता की उत्पत्ति होती है, और वही स्वभाव कर्म है आत्मा का। वितराग परिणाम यही आत्मा का स्वभाव है, इसलिए आत्मा अनुपचरित व्यवहार से दौर कर्म का करता है, राग द्वेष मोह जैसा परिणाम करता है, उसका नया कर्म बंधन होता है, उदय में आता है, उसको प्रारब्ध यानी नसीब कहने में आता है, उसका कर्ता खुद ही है। उपचार से घर नगर आदि का भी करता है, जैसे हमने ये बनाया, मकान बनाया, वो बनाया, वो बनाया, तो उपचार है। वास्तव में परमाणु स्वयं क्रियाशील है, आत्मा को निमित्त रूप से घाव करता है, इससे कोई ज्यादा संबंध इसका नहीं है। और ये आज कोई मेरा नहीं, ये भाव करना पड़ता ना पेटावा है सर। शू है कि एक जीव है, जीव अपना अनुकूल प्रतिकूल संयोग को ही मुख्यता देता है। इसकी मुख्यता संसार में होती है अपने अनुकूल प्रतिकूल संयोग से। तो अनुकूल प्रतिकूल संयोग कैसे हुआ कि अपने कारण तो अपने भाव से बंधन हुआ था, अभी उसका उदय आया, किसी दूसरे के कारण से नहीं हुआ। इसलिए हमारी अनुकूलता और हमारी प्रतिकूलता के लिए हमें किसी से राग द्वेष करना ये हमारी भूल है। राग द्वेष नहीं करना इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम वितराग है। तो बात तो वहां ले जानी है, उस हेतु से ये बात चल रही है। हेतु उठना ये वितरकता का हेतु है। चौथा पद है आत्मा भोक्ता है, यानी भोगने वाला भी आत्मा है। जो जो कुछ क्रिया है यह सभी सर्व क्रियाएं सफल है, कोई क्रिया निष्फल नहीं होती, निरर्थक नहीं है। जो कुछ भी करने में आता है इसका फल भी भोगने में आता है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। क्यों सभी को एक सी मुखमुद्रा नहीं है, है? सभी के मुख भी अलग अलग है, सभी के देह शरीर से लेकर के शरीर सबका शरीर एक सा नहीं है। कोई बीमार है, कोई जन्म से बीमार है, क्यों? उसने क्या किया, कोई खा लिया पी लिया क्या? तो पूर्ण कर्म को सूचित करता है। तो जैसा भी जीव ने कर्म किया है वो तो सर्व सफल है, उसका पूर्णा उसके काल में अवश्य होता ही है, नहीं होता है ऐसा नहीं। ये एक असमाधान का प्रकार है जगत में कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत पाप करते हैं लेकिन सुख उसका संयोग अच्छे दिखते हैं, कोई प्रमाणिक है पाप नहीं करते हैं तो भी ज्यादा करते हैं फिर भी उनको प्रतिकूलता है ज्यादा है, ऐसा क्या? जो सज्जन है उनको दुख और जो दुर्जन है दुष्ट है उनको सुख, ऐसा क्या? समाधान नहीं होता है भाई, लेकिन ये पूर्व कर्म के देन है, वर्तमान कर्म के देन नहीं है। वर्तमान कर्म जो होता है उसका भोगना आगे होगा, तो भी इसका फल इधर भोगने में नहीं आता है, तो इसलिए किसी को समाधान नहीं होगा। हमारे पास पैसा है, पैसा से हम जहर भी खरीद सकते हैं मरने के लिए, पर बचने के लिए दवा भी खर्च खरीद सकते हैं, पैसा तो पैसा है। तो इसके लिए वर्तमान कोई कारण नहीं है, हमारी जो गति है वो पूर्व कर्म अनुसार चलती है, क्या करना क्या नहीं करना जैसी कर्मानुसार ही गति होती है, तो जैसा उसको फल भोगना है ऐसा ही विचार आएगा, तो ऐसा ही सब फल भोगने के लिए सब प्रकार खड़े हो जाएंगे कारणों से। जैसे जहर खाने से इसका फल होता है, शक्कर खाने से इसका फल होता है, अग्नि को स्पर्श करने से जलने का अग्नि स्पर्श का फल होता है, हिम मैंने बर्फ को स्पर्श करने से हिम स्पर्श का भी फल हुए बिना नहीं रहता, वैसे ही कषाय और अकषाय जीव के परिणाम में कषाय होता है क्रोध मान माया लोभ आदि, और अकषाय वितरागता होती है, जो कुछ भी परिणाम होता है आत्मा करता है उसका फल भी होने योग्य ही है, पर ये होता ही है, उस क्रिया का आत्मा करता होने से आत्मा ही भोगता है। देखिए हम बीज बोते हैं चावल बोते हैं तो ऊपर चावल की डूबी लगती है, बगल में ज्वार का दाना वो दोनों भाई है, दोनों जमीन में दोनों को पानी देते हैं दोनों को प्रकाश मिलता है, वो तो ज्वार की डूबी निकलेगी, ऐसा ही विज्ञान है, वस्तु के पदार्थ का ऐसा ही विज्ञान है, वो विज्ञान अनुसार सब कार्य होता है, जैसा आत्मा कर्म करता है ऐसा उसको बोलता है, और ये प्रत्यक्ष देखने में आता है, मनुष्य है और वहां दूसरे भी पशु पक्षी भी है, कोई पक्षी है कोई पशु है कोई जंतर है, ऐसा क्यों? वे भी आत्मा ही है जीव ही है, क्यों ऐसा है कि इसके पूर्व कर्म के कारण से ऐसा हुआ, उसका पूर्व भी भोग रहा है, हम मनुष्य के लायक कर्म किया तो मनुष्य के लायक कर्म फल को भोगते हैं, ये पशु के लायक कर्म किया तो पशु के लायक कर्म फल को भोगता है। तो ये बात तो रही संसार के परिणाम की, अब कहते हैं कि मोक्ष भी है, क्या संसार में जीव को जन्म मरण करके भटकना ही पड़े ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसका छुटकारा भी हो सकता है। जैसे अनुपचरित व्यवहार से जीव को कर्म का कर्तापना भी स्थापित किया और कर्तापना होने से भोक्तापना भी स्थापित किया, वैसे उस कर्म कर भी सकते हैं, निद्राता हो जाए तो न शुभ कर्म हो गया न अशुभ कर्म हो गया, फल तो शुभ अशुभ का संसार में मिलता है, उनका फल पाप का फल मिलता है, दोनों से एक तीसरा प्रकार का परिणाम है जिसका नाम वितरागता कहने में आता है, इससे जैन दर्शन के अलावा और किसी बात नहीं है, सारे दुनिया में जितने भी संप्रदाय है उसमें पुण्य पाप का ही जो भी गिनती है और उसका भी करना भोगना वही बात चली है, जैन दर्शन में मोक्ष की बात चली है, कहते हैं कि जब वितरागता है वहां मोक्ष होता है, वहां कर्म नहीं बनता, निष्कर्म अवस्था को मोक्ष कहते हैं। इससे वितराग परिणाम से कोई कर्म नहीं बनता, कर्म के कर्म जो है वो भोगने से खत्म होते हैं, नए कर्म बनते नहीं है, तो आत्मा निर्वाण पद को प्राप्त होता है, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष पद है क्योंकि कर्म का नाश भी होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रसादादि का तीव्रता होता है, उसका अनभ्यास से, उसका अपरिचय से, उसको उपशम करने से उसका मंद बड़ा दिखता है और क्षीण में नाश होने युग भी दिखता है, क्षीण हो सकता है। क्या कहते हैं कि जो कर्म मंद है वो तो कषाय भाव से बन रहे, तो उसमें तीव्र मंदता तो दिखने में आती है, जब तीव्र मंदता दिखने में आती है तो उसका अभाव नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उस प्रकार के बंधन बंद भाव से क्षीण होकर के क्षीण हो सकने योग्य होने से उससे रहित ऐसा जो शुद्ध आत्म स्वभाव, उस रूप मोक्ष पद है। मोक्ष पद है वो निष्कर्म अवस्था है, सभी कर्म खत्म जिसके हो गए, नए कर्म वितराग भाव के कारण से नहीं बंधे, उसको मोक्ष होता है। हमारे तीर्थंकर आदि सब मोक्ष में गए हैं, अनंत आत्माएं जो हमारे जैसे संसार में थे वही आत्मा निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करके वितरागता की उपासना करके मोक्ष में गए हैं और आज निश्चितानंद में विराजमान है। नमो सिद्धानंद कहते हैं ये मोक्ष पद है। अब छठा आखिरी पद कहते हैं मोक्ष का उपाय भी है, मोक्ष है उतना ही स्थापित नहीं कहते करते, मोक्ष का इलाज भी है उपाय भी है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना इसकी भी व्यवस्था हमारे दिनागम में व्यवस्थित रूप से स्थापित की है। यदि कर्मबंध मात्र हुआ ही करे ऐसा ही हो तो उसका नाश कभी नहीं हो सकता, परंतु कर्मबंध से विपरीत स्वभाव वाले ऐसे ज्ञान दर्शन समाधि वैराग्य भक्ति आदि साधन प्रत्यक्ष है, जिस साधन के बल से कर्मबंध से प्रथम शिथिल होते हैं। देखो पहले लाख रुपये नहीं लिया तो इसका अनुवाद टूटता है, बल टूटता है, कर्मबंध शिथिल होते हैं, उपशम होते हैं, दबते हैं, निर्बल होने से दबते हैं और फिर इसका नाश भी होता है। इसलिए ज्ञान दर्शन संयम आदि मोक्ष पद का उपाय है, ज्ञान दर्शन चारित्र से मिल जाए, मोक्ष पद का उपाय है। तो सूत्र में पहला सूत्र है, सूत्र जीव है संजय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष का उपाय कहो या मोक्ष का मार्ग कहो, मोक्ष भी है और मोक्ष का उपाय भी है। इसलिए सम्यक दर्शन कैसे हो, सम्यक ज्ञान कैसे हो, सम्यक चारित्र कैसे हो, उसको समझ करके उस प्रकार से परिणमन करना, यही मोक्ष का उपाय है। ऐसा मोक्ष उपाय से मोक्ष की प्राप्ति आगे जाकर के अवश्य अवश्य होती है। जिसको संसार परिभ्रम से छूटना है वो उसकी खोज के पीछे लगता है, और खोज जो खोज के पीछे लगता है उसको तो मिलता है, उसको इतनी अपेक्षा नहीं है या उपेक्षा है उसको ये मिलना कठिन लगता है, इतनी बात है।